क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
विशालकाय एक पंख गज पक्षी। मुनिया जानती थी कि एक पंख वाले उस विशालकाय गज पक्षी ने घोड़े को नहीं निगला है। हाँ, वह इतना बड़ा तो था कि एक घोड़े को निगल जाता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि उसने उसे निगल ही लिया था। नटखट झील के पास वाले उस जंगल से गायब हुआ था जहां वह गजपक्षी रहता था। अधनिया गांव में दो घोड़ों नटखट और सरपट द्वारा खींचे जाने वाली केवल एक ही घोड़ा गाड़ी थी। जंगल के अंदर बसे इस छोटे से गांव में पीढ़ियों से लोगों को इस विशालकाय एक पंख गज पक्षी के बारे में मालूम था। चूंकि वह किसी के भी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाता था, इसलिए गांव का कोई भी बंदा उसे छेड़ता न था। अपनी प्रजाति का वह आखिरी जीव था और सैकड़ों वर्ष से यह प्रजाति विलुप्त मान ली गई थी। लोग नहीं जानते थे कि उस प्रजाति का जीवित अवशेष, जो एक को छोड़ अपने बाकी सारे पंख गंवा चुका था, अब भी अधनिया के जंगलों में विचरता था। गज पक्षी और गांव वाले एक दूसरे से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते थे, पर मुनिया नहीं। हालांकि चलते समय वह लंगड़ाती थी, लेकिन थी बड़ी हिम्मत वाली। अक्सर वह जंगल में घुस जाती और एक पंख वाले उस विशालकाय गज पक्षी को देखने के लिए झील पर जाया करती थी। दिन के समय वह गज पक्षी झील के पास आया करता, या तो धूप तापने या फिर झील में पानी छपछपाते हुए अकेला खुद से ही खेलने। कभी कभी वह पानी में आधा डूबा रहता और बाकी समय उसका कोई सुराग ही न मिलता। तब शायद वह घने जंगल में किसी बीहड़ कोने में बैठा आराम कर रहा होता। विशालकाय एक पंख गज पक्षी एक पेड़ जितना ऊंचा था। उसकी एक लंबी और मजबूत गर्दन थी। पंजों वाली हाथी समान लंबी टांगे और भाले जैसा एक भारी भरकम भाल था। उसके लंबे लंबे पंजे और नाखून डरावने लगते थे। पर मुनिया जल्द ही यह जान गई कि वह तो शर्मीला और घास फूस खाने वाला एक शांत पक्षी है। वह बस झील के किनारे लगे पौधे और पत्तियां चबाता रहता। मुनिया को महसूस हुआ कि उसमें और उस गज पक्षी में कुछ समानता है। सही तो है, विशालकाय एक पंख गज पक्षी उड़ नहीं सकता था और मुनिया बेचारी दौड़ नहीं सकती थी। गांव के बाकी सारे बच्चे उसके लंगड़ाने का मजाक उड़ाते थे और अपने खेलों में उसे शामिल न करते। इसलिए उसे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था। मुनिया को यह एहसास हमेशा सताता रहता कि गज पक्षी को पता है कि मुनिया कहीं आसपास है, क्योंकि वह अक्सर उस पेड़ की दिशा में देखता जिसके पीछे वह छुपी रहती। हर सुबह मुनिया गांव के कुएं से 3 मटके पानी भर लाती और लकड़ियां ले आती ताकि उसकी अम्मा चूल्हा फूंक सके। इसके बाद वह हंसते खेलते अपनी झोपड़ी से बाहर चली जाती। अम्मा समझती कि वह गांव के बच्चों के साथ खेलने जा रही है। उन्हें यह पता न था कि मुनिया जंगल में उस झील पर जाती है जहां वो विशाल गाय एक पंख गज पक्षी रहता था। एक दिन मुनिया ने बाहर खुले में आने की हिम्मत बटोरी। अपना सिर घुमाए बिना उस विशाल काय ने पहले तो अपनी आंखें घुमाकर मुनिया को देखा और फिर उन्हें बंद कर उसने मुनिया के आगे बढ़ने की कोई परवाह ही नहीं की। उसके सिर पर भन भनाती मक्खियों से ज्यादा ध्यान न खींच पाने के चलते मुनिया धम्म से अपने पैर पटक उसकी ओर बढ़ी। अचानक उस विशाल काय ने अपना एक पंजा उठाया, मुनिया चीखी और झील के उथले पानी में सिर के बल गिर पड़ी। पानी में भीगी भीगी जब वह झील से बाहर आई तो क्या देखती है कि गज पक्षी का समूचा बदन हिल डुल रहा है। वह समझ गई कि वह हंस रहा था।
तुम्हें इसमें हंसी ठट्ठा नजर आता है?
उसने अपने दांत पीसे और मुड़कर चली गई। इससे पहले कि वह खुला मैदान पार कर पाती, कोई गोलाकार चीज उसके पांव से आ टकराई। उसे देखने के लिए वह रुकी। किसी पेड़ का वह एक खोखला गोलाकार फल था। विशाल गज पक्षी खेलना चाहता था। फलनुमा गेंद पकड़ने के लिए उसने अपना एक पंजा ऊपर किया। झिझकते झिझकते उसने वह गेंद उसकी ओर फेंकी। आड़े तिरछे ढुलक कर उसने गेंद को अपनी चोंच में पकड़ लिया। इस प्रकार मुनिया की दोस्ती गज पक्षी से हो गई। अंततः जब उसे एक दोस्त मिला भी तो नटखट घोड़ा गायब हो गया और हर कोई उस विशालकाय एक पंख गज पक्षी पर शक करने लगा। नटखट को सर्वत्र ढूंढ चुकने के बाद मुनिया समेत गांव के सभी छोटे बड़े पुराने बरगद की छांव तले गांव की चौपाल पर इकट्ठा हुए। अधनिया एक छोटा अलग थलग गांव था जिसमें हर कोई हर किसी को जानता था। गांव में तो कोई चोर हो ही नहीं सकता था। दूध वाले ने कसम खाकर कहा था कि उसने नटखट को झील की ओर चौकड़ी भरकर जाते हुए देखा है, लेकिन वह इस बात का खुलासा न कर पाया कि आखिर नटखट बाड़े से कैसे छूटकर निकल भागा था। दिन में बारिश होने के चलते नटखट के खुरों के सारे निशान भी मिट चले थे और उन्हें देख पाना मुमकिन न था। नटखट का कहीं कोई नामो निशान नहीं। हो सकता है बाड़े का दरवाजा ठीक से बंद न किया गया हो और वह भाग निकला हो। तो फिर जंगल ही में किसी ने उसे खा लिया होगा। गांव के मुखिया को संबोधित करते हुए एक हट्टा कट्टा नौजवान बोला, उस विशालकाय एक पंख गज पक्षी के अलावा और कौन हो सकता है भला? उसे तो खत्म कर देना चाहिए, दूध वाले ने कहा। बरसों से यूं चुपचाप पड़े पड़े वह दुष्ट अपनी योजनाएं बनाता रहा है। सब लोगों ने सहमति में हुंकारा। मुनिया यह सारी कार्यवाही चुपचाप देखे जा रही थी। वह बोलना चाहती थी
लेकिन जिसकी अनुमति नहीं थी उसकी सजा क्या होगी? और अगर वह बोलती भी तो कौन उसकी बात पर यकीन करता? सही है, इधर बरसों की आराम की जिंदगी ने उसे खतरनाक बना दिया है, मुनिया के पिताजी जोर देकर बोले। आज एक घोड़ा गया है, कल को हमारे बच्चे की बारी भी हो सकती है। इस पर मुखिया गांव वालों की गुस्सैल आवाजों से भी ऊंची आवाज में बोला,
भाइयों, यह बात सही है कि हमारा सामना एक राक्षस से है, लेकिन हमारे पास संख्या की शक्ति है, इसलिए आइए इकट्ठे हो, अपनी हिम्मत बांध उसे खत्म करें।
बदले में एक सहमति भरी हुंकार गूंज उठी, लेकिन उस विशालकाय एक पंख गजपक्षी ने घोड़ा नहीं खाया, मुनिया ने लंगड़ाते हुए आगे बढ़कर बहुत धीमे स्वर में कहा। जिस वक्त घोड़ा गायब हुआ उस वक्त मैं उसके साथ वहीं पर थी। समूची सभा में एक गहरा सन्नाटा सा छा गया।
तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है?
मुखिया गरज कर बोला। यही कि वह राक्षस मेरा दोस्त है, यह काम उसका नहीं है।
इस लड़की का तो दिमाग फिर गया है,
पीछे से कोई आदमी चिल्लाया। बाकी सारे बच्चों ने मुंह बिचका दिए। वह तो सिर्फ पत्तियां खाता है, तो फिर वह घोड़ा कैसे खा सकता है? अपनी जगह से हिले डुले बिना ही मुनिया चिल्ला कर बोली,
अपनी चुटिया तो बना नहीं सकती और चली हो हमें समझाने।
मुनिया के बाबूजी आंखें तरेरते हुए उसकी तरफ बढ़े।
जाओ, जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो।
एक वही राक्षस तो बस मेरा दोस्त है।
उसके पिताजी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन वह रोई नहीं और वहीं पर गांव वालों के सामने खड़ी रही।
अरे लड़की को छोड़ो, हम लोग उस राक्षस को सवेरे सवेरे धर लेंगे, एक हट्टा कट्टा आदमी बोला।
तो फिर कल सुबह की बात पक्की, मुखिया ने कहा और सभा विसर्जित हो गई।
मुनिया के पास सिर्फ एक रात थी। सवाल ये था कि वह उसकी बेगुनाही भला कैसे साबित करे।
सोचो मुनिया, सोचो,
फुसफुसाकर उसने खुद से कहा। दूध वाले ने नटखट को झील की ओर जाने वाली सड़क पर तेजी से भागते हुए देखा था, लेकिन झील तक पहुंचने से पहले वह सड़क एक मोड़ लेती है और चंदेसरा की ओर जाती है। क्या पता नटखट अगर वहीं गया हो तो। चंदेसरा कुछ ही दूर एक गांव था। मुनिया इस संभावना को लेकर आशान्वित थी, लेकिन यह बात वह अपने पिताजी को नहीं कह सकती थी। उसके माँ बाप उससे नाराज थे और रात को सोने से पहले वे उससे कुछ भी नहीं बोले थे। उनके सोते ही वह अपने बिस्तर से बाहर निकली और दरवाजे पर लटकी लालटेन लेकर वह घर के बाहर हो ली। गांव पार करने के बाद वह चंदेसरा जाने वाले जंगल के रास्ते पर चल दी। जंगल की फिजा में उल्लू की आवाज गूंज रही थी। दूर से एक सियार के गुर्राने की आवाज आई। यूं लगता था जैसे पेड़ों की छायाएं अपनी काली काली उंगलियां लहरा रही हो। मुनिया एक पल को तो ठिठकी, पर अगले ही पल उसे जंगल में आराम से सोते उस महाकाय का ख्याल आ गया। वह अगर नहीं गई तो वह शायद अगली रात भी न देख पाए। एक गहरी सांस लेकर उस आधी रात को ही जंगल से होकर चंदेसरा जाने वाले रास्ते पर लंगड़ाते लंगड़ाते चल पड़ी मुनिया। अगली सुबह सारे गांव वाले लाठियां, भाले, नुकीले पत्थर और बड़े बड़े चाकू लेकर जंगल झील पर इकट्ठे हुए। विशालकाय एक पंख गज पक्षी उस वक्त झील के समीप आराम फरमा रहा था जब गांव वालों की भीड़ उसकी ओर बढ़ी। पक्षी की पंखहीन पीठ धूप में चमक रही थी। वह धीरे से उठा और अपनी तरफ आती भीड़ को ताकने लगा। उसके विराट आकार को देख गांव वाले थोड़ी दूर पर आकर रुक गए और आगे बढ़ने को लेकर दुविधा में पड़ गए। पल भर की ठिठक के बाद मुखिया चिल्लाया, तैयार हो जाओ। भीड़ गर्जी, अपने अपने हथियारों पर उनके हाथों की पकड़ और मजबूत हुई और वे तैयार हो चले उस भीम काय को रौंदने के लिए। ठहरो, सारे शोर शराबे को चीर कर मुनिया की पतली सी आवाज आई। भीड़ और उस महाकाय के बीच से लंगड़ाती हुई वह आगे बढ़ी। मुनिया, तुरंत वापस आ जाओ, मुनिया के बाबूजी का आदेश था। उसे पकड़ो तो। मुनिया के बाबूजी और एक ग्रामीण उसकी ओर दौड़ पड़े। महाकाय को दो कदम आगे बढ़ता देख वे लोग रुक गए। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो हम लोग तुम दोनों से इकट्ठे ही निपटेंगे। अपने हाथ में भाला उठाए वह हट्टा कट्टा आदमी चीखा, क्या हो रहा है? भीड़ के पीछे से कोई चिल्लाया। लंबी दाढ़ी और हल्के कुबड़ वाला एक आदमी अपने हाथ में नटखट की लगाम थामे नजर आया। ये क्या हो रहा है? उसने अपना सवाल दोहराया। मुखिया ने हैरत भरी नजर से पूछा, सारथी, तुम यहां क्या कर रहे हो और यह नटखट तुम्हारे पास कैसे? जैसा कि आप जानते हैं, कुछ साल पहले मैंने नटखट को बेच दिया था। कल मैं नटखट के भाइयों बांका और बलवान के द्वारा खींची जाने वाली बग्घी में सवार आपके गांव से गुजर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से नटखट अपने आप को छुड़ा हमारे पीछे पीछे भागकर चंदेसरा चला गया। मैं उसे पहचान न सका और यह समझ न पाया कि इसका करूं तो क्या करूं। फिर आज सुबह मैंने इस नन्ही सी बच्ची को एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी जाते और एक गुमशुदा घोड़े के बारे में पूछते हुए देखा। लेकिन या इलाही, ये माजरा क्या है? तीसरी बार उसने अपना वही सवाल किया। लेकिन गांव वाले सारथी को क्या जवाब देते? उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। मुनिया के पिताजी अपनी बेटी के पास गए और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे वापस गांव ले आए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से कोई भी बच्चा मुनिया के लंगड़ाने पर नहीं हंसा। वे सब अब उसके दोस्त होना चाहते थे, लेकिन केवल भीम काय ही मुनिया का अकेला सच्चा मित्र बना रहा। मुनिया की कहानी तमाम गांवों में फैली और दूर दराज के ग्रामीण फुसफुसाकर एक दूसरे से कहते, देखा, मुनिया जानती थी कि उस विशालकाय एक पंख गज पक्षी ने घोड़े को नहीं डकारा। यह कहानी एक वास्तविक गज पक्षी से प्रेरित है। इस विशाल पक्षी यानी कि एलिफेंट बर्ड को वैज्ञानिकों ने एपियोर्निस मैक्सिमस का नाम दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी था और मेडागास्कर के द्वीपों में पाया जाता था। वनों के नष्ट होने और आबादी बढ़ने से ये विशाल पक्षी 1700 ईस्वी सदी के आसपास लुप्त हो गए।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियां आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।